ये कौन कैसे सकता है कि एक बार मालदीव के आगे ए नारद जी चलो पहले जरा मैं गुफा को देखू कि वहां गोबे है कि नहीं। नारद जी को संग लेकर के वो पहाड़ी की गुफा में जब कदरा में गए पत्थर को हटाया अंदर क्या देखा एक गाय बाछड़ा बार बार जो कि क्यों आंखों को मरने लगे और मालकी कहने लगे नारद अरे धूल हो गई है भागा के बार बार तो इधर है बछड़े इधर है कौवे इधर है अपने को भ्रम हो गया है वृक्ष में कोई गुहार बाल और गाय थी चले के बाहर उसने चल के देख लो फिर गुहार को बंद किया और फिर वृक्ष में दब गए तो फिर वही लीला मात्र लीला हो रही थी। कह रहे भाई एक बार गुफा को और देख ले फिर गुफा के पास गए अब दिल में गलानी आ गई अब अपने ठिकाने आ गई और नारद जी से कहने लगे भाई अपने से बड़ी भारी भूल हो गई है मैंने उनकी लीला को तो देखा पर उनके स्वरूप की पहचान नहीं। पर बड़े लोग होते हैं वो अपनी चतुराई और कैसे छूटे वो तो कृष्ण जी को छोटा होने जाता ब्रह्मा इसलिए कहने लगे भाई देखो नारद जी ये परब्रह्म भगवान आना तो लिखा सुना तो था हमने पर ये भी सुना है कि अगर इनका जूठन प्रसाद मिल जाएगा तो अपना बेड़ा सागर से पार हो जाएगा। नारद जी अब डायरेक्ट जाकर के हम इनके पगे लागे तो बड़ी डिग्रेड पोजिशन हो जाएगी इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। एक तो एक कहानी जल बहुत छोटा पड़े वाली बात है प्रसाद का कंका लेना है तुम तो जिधर रुको मैं अभी प्रसाद लेकर के आता हूँ। नारद जी कहने लगे आगे भी यही बातें आप कर रहे थे मैं उठे अच्छा मैं इधर इंतजारी करता हूँ तो प्रसाद लेके आ जाए। अब चले ब्रह्मा जी इसका मेरे प्राण वल्लभ हो श्री कृष्ण कन्हैया का प्रसाद ले रहे। अब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी प्रसाद लेने के लिए आ रहे थे एक बार मारो इस प्रकार आज अब भाग के चले आते हैं बैठ सब बिठा दिए सब को पत्थर पुसवा दिए और तुम शीघ्र घुसो दे अब माखन और पेड़े और मिठाई। अब पहले दिन से ही हमारे राजी महाराज के भंडारे चलते हैं और देखने वालों को जैसी दिल में होती है इनके भंडारे करते हैं कभी खीरे खाते हैं तो कभी मांस में खाते हैं तो कभी कुछ नहीं खाते क्योंकि हमारे प्राण वर्षों के पास हमारी पहले से ही जब से लाए थे ऐसी लीला देखकर जब सब बार बार रोसा गया सामान हो लगे खाने तो खाना शुरू ही किया तो सबको आप लोगों को बोल दिया एक बार मानो इस प्रकार खा भी रहे देखो भाई आज अन्नकूट अन्नपूर्ण का भंडारा महाराज वो क्या होता है अब मानो आपको क्या पता वो क्या होता है। उस दिन से पहले कोई भी हिंदू धर्म के अंदर अन्नकूट का भंडार नहीं होता था ये उस दिन से चालू हुआ। कहना लगे देखो भाई आज इतना सामान पत्तल में परोसा गया है इसका जूठन नहीं छोड़ना नहीं तो अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल को ये माल पुआ और शिकरा मसूर दिए खाने को नहीं मिलेगा। अब ग्वाल वालों को जो मन को खाने वाली वस्तु है उसका डालिका स्नान करता है कि नहीं तो बर्फ नहीं मिलेगी अभी अभी जाता हूं और थप्पड़ मारो कभी नहीं डर थप्पड़ से वो नहीं डरते जो उसके जहन वाली वस्तु है उसके लिए कहना लोग बिल्कुल कहते हुए मान जाते। अगर वाल वालों को ये कहा तो कहने लगे अभी सब कुछ खा जाएंगे वाल वालों ने जो कुछ भी पत्तल में परोसा हुआ था सब खा गए। कृष्ण कन्हैया जी कहते भी ऐसे हो सकता है कुछ ना कुछ पत्थर के अंदर घुस गया हो रहे फिर इसलिए ऐसा करो अपने पत्थर को मोड़ दो दौड़ा दो इसको कर दिया कह रहे भाई एक बार और कर दो फिर भी शायद कुछ बना था, कह रहे बस एक बार और कर लो और इतना करके अपनी अपनी गाय के। अब ब्रह्मा जी महाराज प्रसाद लेने के बहाने करके आए, ब्रह्मा के रूप में ही आए, वो एक सागरा का रूप था, कौवा बन के पेड़ पर सामने आकर के बैठ गए। उनकी दृष्टि ने पहचाना मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कन्हैया की कि ये तो ब्रह्मा ने कौवे का रूप बनाया है प्रसाद करने के लिए। लेने के बाद आप जानते हो जब वो कागरे के हाथ में पशु आता नहीं तो अपने मुख की चोंच को फिर घिसना शुरू करता है, बेचारा चोंच को घिसता रह गया, पर प्रसाद का करता नसीब में भारतीय क्या ब्रह्मा जी के पास कह रहे ब्रह्मा कौन है चिंता न कर, अरे अभी लाता हूं प्रसाद, तू इंतजार तो कर। तुरंत ब्रह्मा जी माछली का रूप धारण करके और जल में जा रखे कि अब इन्होंने खाया है, जल पिएंगे और कोगला करेंगे तो कोगले के अंदर एक तनका ही तो प्रसाद का चाहिए। देखिए किस टूटकर के लिए ब्रह्मा तस्त रहे, माछली का रूप जाके धारण करके जब बैठ गए और कृष्ण कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेके, जल तो अलग नहीं था, वो तो पीना ही है। जब जमुना तट पे पहुंचते हैं तो वहां और भी नित्य प्रति मछलियां जाकर रहती थी और उनके अंदर एक मछली ब्रह्मा जी भी मन के थर 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 करके घूम रही। जब राजीव राय की दृष्टि आकर के मछलियों पर तो रोक पड़ती थी, देखा कि ये नई मछली आज नहीं है, ये तो रोका भी नहीं पहले होती थी, देख लिया कि अच्छा वाह मानो इधर का क्या हो गए आज और जमुना तट पे सारे। देखो भाई बड़े प्यार से समझाते थे कि देखो आज जल अरोगना है, कह रही वो तो प्यास ही लगी है, जब जल तो अरोगना है और कोबरा भी सबने करना है, लेकिन जैसा हम करेंगे वैसे कोबला करना, नहीं तो अर्थ भगवान नाराज हो जाएंगे और कल से खाने को इतनी सी बात कह देते थे, नहीं सरकार बोलो कैसे करना है। दोनों हाथों से स्वयं पहले जल को लिया, एक या दो घोटे जितने पी जिसे पी के कहने लगे देखो आपका मेरी और कोबला कैसे करेंगे, मुख में पानी दिया भर और जैसे अपन कोबला करते हैं, कहने लगे कोबला करना और उसके बाद जल बाहर नहीं गिराना, कोबले वाले जल को भी अंदर। अब सब ग्वाल वालों ने जल पिया, जल ले करके मुख में कोबला भी किया और कोबले को अंदर जब सटक गए, ब्रह्मा जी हार करके नारद के पास जाते हैं, कहते भाई वो भी यत्न ब्रह्मा कर था कि सो जूझन और हमारे सुंदर साथ प्रसाद के मेरे काम से दो मिनट लगते हैं प्रसाद देने में, उसके बिना भी भागने का प्रयास कर। इस प्रसाद की कीमत ब्रह्मा से पूछना जाके कभी कि भैया प्रसाद लेने गया था क्या गलत अब ब्रह्मा जी को नारद भगवान कहते हैं महाराज प्रसाद लाए थे बोले भी आप बोलो कि नारद है तो कम तो है नहीं। तब श्रीमद भागवत के पन्नों को लौटो, अब देखो ब्रह्मा जी की हालत क्या बची है, और चतुर्मुखी ब्रह्मा गले में कपड़ा डालकर इस दिशा से और मुख में घास का दिन का रखकर, मैं अभी 6 वर्ष के मैं श्री कृष्ण के चरणों में आकर के दंडवत करते हुए ब्रह्मा के सुंदर था, जब चरणों में इस दिशा से आकर के गिरते हैं मुख में घास के जिनके का अर्थ क्या होता है, रेती बिगाड़ते है मेरे प्रभु मेरे अभिमान ने मेरा नाश कर दिया, मेरी बुद्धि पशु के तुल्य थी, एक पशु जैसा गाय जैसी मेरी बुद्धि थी, एक मुख के अंदर घास के तिनके से मुझे एक पशु के समान समझकर शरणागत आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मुझे क्षमा की। मैंने आपके स्वरूप को पहचाना, मैं लीला को ही देखता था, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, हे कृपालु भगवान, क्षमा की। क्षमा मिलेगी तुम्हें, लेकिन सबसे बात तुम्हें सबसे मोटी बुद्धि तुमको दी थी और सब ज्ञान का मालिक तुमको बनाया था कि दुनिया को मेरे स्वरूप की पहचान करा के भाव सागर से पार उतरने का रास्ता बताओ, और तुम लोगों ने उल्टा अपनी पूजा खत्म करवा दी, खुद ही बुजुर्ग लेकर के बैठ गए। जाओ, क्या कहा कि तुम्हारी बुद्धि से बने हुए ग्रंथों को ज्ञान के साथ सुंदर साथी पढ़ो, भागवत को लिखा करके नहीं, ऐ ब्रह्मा तेरी बुद्धि से बनाए हुए ग्रंथों को, क्योंकि तुझे मैंने पराशक्ति नहीं दी थी, तुम्हें कौन सी शक्ति दे रखी थी, अपरा मिथ्या माया की शक्ति दी थी। इन ग्रंथों को जो ले करके चलेगा वो कभी भी मेरे पार ब्रह्म स्वरूप की पहचाना कर नहीं सकेगा और कोई भक्ति पार नहीं सकेगा। तुम्हें तो क्षमा किया जाता है और सबसे बाद में तुम्हें भी अर्थ नहीं, क्षमा, क्योंकि जो उनकी शरण में आ जाता है, शरणे मरने सुनो नहीं तो बड़े हो गरीब। जब ऐसा रूप लेकर के ब्रह्मा जी आते हैं उसी समय क्षमा कर दिया। आइए सुंदर साजी आगे बढ़िए। अब जैसे जैसे समय व्यतीत तो होता जाता है तो माया का भी अधिक जोर होता जाता है। आज तो हम लोग ओढ़ के अंदर बैठे थे राज्य की सुवारी सुनने के लिए, और गांव के सुंदर साथ को समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। क्या कहते हैं, अजी दिवाली से लेकर पंचमी तक तो हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, खाली रहते थे, अब पंचमी हो गई है, अब तो काम चालू किया है, नया वही खाता लगाया है, अब तो हमारे पास फुर्सत है। तो ये बताओ, क्या ब्रिज के और गोकुल में रहने वाली गोपियां सारी निकम्मी होती थी, उनको कोई काम नहीं, सारा दिन जमुना तट पे कृष्ण कन्हैया के पास रहती कैसे थी, कभी ये बात नहीं सोची है? आओ बताए सो क्या करती थी वो, जरा ब्रिज लीला को जो श्री जी ने वर्णन किया है कि मेरी आत्माएं कैसे रहा करती थी। वो दिन में कोई काम नहीं करती थी, सारा काम सबला रात को करती थी। कैसे, रात्रि के 9 बजे से लीला शुरू करता हूं, ध्यान के साथ सुनिए जो स्वामी जी ने ब्रज लीला में वर्णन किया। रात्रि को 9 बजे पति आए, उनको भोजन कराया, उनकी सेवा की, चरण दबाए, उनको सुला दिया, और स्वयं के घर वालों को दिखाने के लिए पलंग पर जाती जरूर थी। एक कला सिर्फ रेस्ट, उसको नींद कह लो 24 घंटे के अंदर, या उसको सोना कह लो, कितना सोती थी, 1 घंटा बस घंटा डेढ़ सोए, और कमर सीधी की, रात के 12 बजे चुप संखों के होके बैठे, कोई इसके बाद इस पर नहीं रहता। सबसे पहले कहां से काम चालू होता था, एक पहर लगा पीसना पीसे, आज दसु भाई जी ने घंटियों का काम कर दिया, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी की घंटी होती थी भाई, आटा पिसाने के लिए भी कोई प्रबंध नहीं होता था, हर घर में चक्की लगी होती थी, हाथ से पीसना पड़ता था। स्वामी जी वाणी में लिखते हैं, एक पहर लगा पीसना पीसे, टोकरे स्वारे सागर, साग का कितना सामान आता था, 250 ग्राम भी, अब तो ज्यादा से ज्यादा बाबू जी बैग उठा के जाएंगे, अरे भाई 250 पर लगा दीजिए, भाई 250 पर लगा दीजिए, बस हो ही गया। टोकरे भरे सागर के स्वाने अपने साथ, अब जिस घर में एक टोकरा सागर का रोज हम भी दो हमारे दो। वहां के प्रोग्राम नहीं होते थे, वहां तो अब जिस घर में जोगरा साग का आता है तो कम से कम 20-25 मेंबर तो होते ही होंगे। उन सब का भोजन एक परमधाम की आश्रम बनाती है गोपी। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो मेरे जीवन में रास्ते में अड़चने डालेगी, मेरे प्रीतम मेरे कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए वो रात्रि को ही मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए पहले उठ करके एक पैर तक अपने हाथ से घंटी चलाती है, चक्की पीसती है, फिर साफ करती है। फिर क्या होता है, अमूल डेयरी का दूध नहीं मिलता था, सबके घरों के अंदर गाय भरी हुई, उनका घास तैयार अपने हाथ से लगकर लगकर काटती है और टोकरे भरवा के गायों को साग डाल देती है, घास डालती है कि ये घास खा लेगी तो फिर इनका दूध निकालना। इतने समय में वो क्या करती है, रात को मटके के मटके दही मही बिलोने के जो जमाया था वो जमा दम बैठ करके नहीं खड़ी होकर के चंपे के साथ उसको देती है। मान कैदों का कभी अब क्या होता है, अरे ये बेचारी आपको कंधा पिलाया गया है, मत्था पिलाया गया है, वहां क्यों नहीं दम चलाते थे, वहां क्यों नहीं पीड़ा होती थी, वहां क्यों नहीं कैरोसिन को रोज दिन खानी पड़ती थी, वहां अंबों के साथ खड़े होकर कैसा नहीं होता, कहां से पीड़ा रह जाएगी। आधे घंटे में सारे शरीर के जो है उछल पुछल हो जाए और इसलिए एक्सरसाइज हो जाए पीड़ा का रस गया। इतने मंत्र के जो मही के दही के पड़े हैं उसको मिलो करके माखन तैयार करना है कृष्ण कन्हैया के माखन का है। जब वो काम हो गया लगातार माखन का रखा करके रख दिया और फिर गायों के पास गए, अपनी बारी का मतलब जो कसम आपकी बाहों बाजियों में रह गई है, मत के मत जो है दूर पर मत के रखा और कढ़ाई के अंदर दे दबा था और नीचे से पान छोंक ली, दूध गर्म कर दिया, उठा दिया और रख के बर्तन भर के रख दिया। अब स्वामी जी वहां लिखते हैं, बड़ी गजब की बातें लिख रही हैं कि चूल्हे भी ऐसे गोपियां बनाती थी जो डबल चूल्हे होते, एक भार आगे और एक भार पीछे, इधर से लकड़ी डाली और दोनों चूल्हों में काम कर रही है, आगे भी पीछे भी, उसके ऊपर दो तवे रख दिए डबल तवे, आप हमारे सब कह रहे हैं इधर पक रही है उधर पा रही है, एकदम दो चूल्हे चला करके दोनों तवों पर रोटियां बनाती है। क्यों? 5 किलो आटा रोज बनाता है, गैस नहीं होती थी और हमारे साधन नहीं थे। अब 6 बजे से पहले पहले साग बना दिया, रोटी तैयार कर दी, दूध गर्म कर दिया, दही मक्खन करके मक्खन तैयार, रात से नहा धो के श्रृंगार बदल के तैयार होते, प्राण वल्लभ के पास जाना, मैंने कपड़ों के साथ नहीं जाना, कृष्ण कन्हैया क्या कहेंगे। इसलिए 6 बजे अद्वैत नहा धो के श्रृंगार करके अपनी सास के चरणों में और सास मेरा क्या आशीर्वाद देती है, उठा सास फिर ले तो बलैया, जब उस मां को कहती है माता जी देखो दूध भी गर्म कर दी है, छाछ हो रखी है, माखन भी मैंने निकाल दिया है, साग भी बना दिया है और रोटी भी बना के सब रखी है, माता जी अब तुम जरा उनको कोई नहीं समझ, सुबह क्या पता उनको क्या होता है, नीचे पूछो उनको, आप ही जान सकते हो उनको पता क्या है, आप समझ गए हैं। अब वो इशारे से अपनी सास को बता रहे हैं, माता जी जरा उनको इनको मेरे खामन को जो शरीर का दुल्हा राजा है सो रहे हैं ना, सो के उठेगा तो जरा संभाल लेना, मैंने कृष्ण कन्हैया के पास इतना काम किया देख करके उठा तो सास फिर इस तरह से बनैया नहीं जाती, दोनों हाथों को यहां रख करके किसी पर वारना कर देने का नाम बनैया होता है। वारी वार ध्यान कि वो मेरी बहुत नहीं जाओ, अरे जाना तू उनको उनको कह दिए जैसे तू नहीं पाला पेट से मेरे निकला जिसकी और के। मैंने भी तो पाला था जा तुम अपने आप से पाल लूंगी। अब गोपी कहां भागती है, उधर 6 बजे कृष्ण करेगा गौरों लोग के चलते हैं और उधर 6 बजे गोपियां जमुना तट हो जाते हैं। 6 बजे और सारा दिन वहां पर रहती है सुंदर दादी कैसे घर चलते हैं। आज जरा किसी को कहने वाले प्रोग अजी क्या करें बच्चों का फाइनल प्रोग्राम इम्तिहान परीक्षा, मतलब उनके सारे बच्चे अनपढ़ थे। अरे उनकी परीक्षा की चिंता है और अपनी परीक्षा की कोई चिंता नहीं कि हमारी भी कोई परीक्षा होगी। सुंदर शास्त्र जी की तरह से वो गोपियां सारा सारा दिन रहती है और संध्या के समय में फिर भागी चली आती और सास भी और ननद भी पीछे से क्या करती है, खा खा के सूखे बर्तनों का ढेर लगा देती टोकरा बन गया कोई चिंता नहीं। अगर बर्तन मरने से और ये घटती घीसने से और ये सब कुछ करने से उसका प्यार मिलता है तो सौदा सस्ता है। ये गोपियों को सुन रहे इसलिए घर में आई और मटकियां उठाई और भागते गए जमुना तट पे, पहले सिर पे पानी रखी। ये नहीं कहे अरे वो बाथरूम की टूटी खोल रहे हो तो ये रसोई की टूटी खोल रहे, जमुना तट पे पानी भरने के लिए जाती भागी भागी जाती है और करती क्या है, 4-5 मटकियां रख लेती है सिर पे और जोर से जोर से भागती है। इसलिए ये भागेगी तो गिर जाएगा ना, तो थोड़ा पानी भर जाएगा तो दूसरी बार फिर भरने से आवेगी और घर वाले क्या कहेंगे, भाग भाग के तो ला रही बेचारी और क्या, वो समझते हैं भाग भाग के ला रही है और ये जान बुझ के भागती हुई किसी ने ऐसे कर देती है कि पानी और गिर जाए तो थोड़ा ही एक मटका रहेगा तो 3 बार जमुना तट पे जाएगी। क्यों, अभी कृष्ण कन्हैया जी अपनी गौओं को लेके जमुना तट पे खड़े और उसके बाद पर जब देखा कि कृष्ण कन्हैया जी घर में गए फटाफट आकर के बर्तनों को निशान भरा प्रसाद किया फिर दवा मांग झाड़ू लगाए और आटा गूंदा फिर छटा छत रोटियां बनाई पति देव के भी शरीर के पति के भी आने से पहले तैयार चौकस पे घर वालों को भोजन खिलाया पति देव को भोजन खिलाया जी खाने के वास्ते सोरा पर्यंत पर चलेगी और फिर यू की यू काम शुरू हो गया। एक प्रेम की लीला 8 वर्ष तक बराबर चलती थी। अब 8 वर्ष जब हो जाते हैं तो क्या होता है, इंद्र पूजन का दिन आ गया। जब इंद्र पूजन का दिन आ गया उत्सव तो सब गोपियों ने अपने घरों के अंदर कढ़ाइयां रख करके कुछ भुजिया बनाने लगी, मिठाइयां बनाने लगी, पाक पकवान बनने लगे। तो कृष्ण कन्हैया गोपियों से पूछने लगे, श्री गोपियों ये बताओ किसके घर में लग्न शादी है, हमको तो बुलावा नहीं आया, क्यों तुम लोग मिठाइयां बना रहे हो, क्या कारण है। देखो किस तरह लाल के साथ है ड्रैगन के फंदों में से मेरे धनि ने पहले दिन से ही सारी आत्माओं को निकाला। ध्यान के साथ सुनिए और सोचिए, पता है मुझे भी कि ये लोग इनको पूजन करने जा रहे हैं लेकिन हटाना है इनको देवी देवों की पूजा से। इस वास्ते उनसे पूछा कि परसों का दिन क्या है, क्यों तुम ये मिठाइया बता रहे हो। तो सबने बताया कि कृष्ण करेगा आपको नहीं पता, परसों तो इंद्र पूजन का दिन, इंद्र भगवान का पूजन होगा। क्यों भाई इंद्र भगवान का पूजन क्यों करोगे, कहना कि महाराज ये जो गोवर्धन पर्वत है ना इसके ऊपर हमारे खेत है और वहां से हमको अनाज आता है और वहां पर घास होता है, यदि इंद्र भगवान वर्षा ना करे तो सूखा पड़ जाएगा और ना तो घास होएगा और ना अनाज होएगा, महाराज हम कहां से खाएंगे और हमारी गौएं घास कहां से खाएंगी, फिर आपको मक्खन कहां से खिलाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। कहने वाह घास कहां होता है, गोवर्धन पहाड़ पे होता है, वार बार कहां जाते हैं गोवर्धन पहाड़ पे जाते हैं, गौएं घास कहां खाने जाती है गोवर्धन पहाड़ पे। तो कृष्ण कन्हैया कहते फिर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो, फिर इंद्र की पूजा क्यों करते हो। कहती हूँ कन्हैया तुझे अभी इन बातों का पता नहीं, क्या कहती है कि तुम्हें अभी इन बातों की खबर किसको कहनी है? भूल गए कौन है कृष्ण को जो अक्षरा राजीव राज है? उनको आज हम सिखाने लगे कि तुम्हें इन बातों का पता नहीं है, हमें ज्यादा पता है। होगी माया जानू के लिए होगी भाई, हो गई अपनी असल ज्यादा बताने लगे कृष्ण करैया तुम्हें क्या खबर है, तू अभी इन बातों को नहीं जानता, तू अभी बच्चा है। अगर बाबा इंद्र भगवान वर्षा नहीं करेंगे, पानी नहीं होएगा, तो धरती भी अनाज कहां से देगी? तो कृष्ण करैया क्या कहने लगे, अरे बाबा तुमको पता ही नहीं है इसके अंदर जो है तुम्हारा गोचर भगवान बैठा है, वो अंदर से अनाज देता है, वही अंदर से घास निकालता है, तुम उसका पूजन करना। ये बताओ कहीं पहाड़ भी भगवान हो सकता है? और इंद्र भगवान का तो हम पूजन करते हैं, उनकी मूर्ति होती है, पुजारी जनों के पास ले जाते हैं थाल, तो वो भगवान के मुख को छुपा देते हैं, फिर हमको प्रसाद मिल जाता है, तो ये पहाड़ कैसे पूजा जाएगा? कहने लगे नहीं मूर्ति हो तो वह क्या शुद्ध है, इसके अंदर भगवान बैठे हैं। और बसो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन कराऊंगा, फिर तुम उनका करना पूजन, और भगवान साक्षात दर्शन दे करके तुम्हारे देवा बिछाइया भगवान आरोगेंगे, फिर और तुम क्या चाहते हो? कहने लगे अच्छा अगर साक्षात दर्शन करवाओगे भगवान के, फिर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे और गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। भले अब परसों का दिन आ गया, सब अपने जान गोकुल की जितनी नारियां थी गोपियां थी सबने मिठाइयों के थाल भर लिए और गए कृष्ण करैया के पास। कह रहे महाराज चलो भगवान के दर्शन कराओ, हम उसका पूजन करेंगे। अब आओ सुंदर साथी, सावधान होकर के 11 साल तो हर साल लगाते रहते हो, देखो भी अब 11 साल के अंदर हो गया था। इस चीज को पहचानो, इस बंधनों में से छूटो जो राजीव राय ने हमको आकर के मुक्त जिन चीजों से करवाया। लेकर के चले सब गोपियों को कहा गोवर्धन पहाड़ पे, और जाने से पहले ही अपने स्वरूप की अरे भी लीला अक्षरा दीद की कौन माया भी पहचानेगा, अपना ही एक अद्भुत स्वरूप उस पहाड़ के ऊपर बिठा दिया जो पहले कभी होता ही नहीं था। आप लेकर के गोपियों को गए, कहने लगे जिनको तुम्हारे भगवान साक्षात बैठे गए, हम गोपियां भी है ना, वाल बाल भी है जान भाई, इधर तो हम रोज आते थे गौए को लेकर के, और हमने तो कभी भी इस भगवान को देखा नहीं, देखा यहां तो होता ही नहीं था, ये रात ही रात में भगवान कहां से जो है आ गए हैं। तो सुंदर था जी भगवान का बहुत बड़ा एक अपराध था रूप और इतना बड़ा मुख लेकर के वो बैठे हैं। तो गोपियों को कहने लगे कृष्ण करैया चलो राधिका रानी चल चलो सारे पूजन करो। अब पहले एक गोपी बड़ी भगवान को तिलक किया, चौखा कराया, माला पहनी और थाल वैसे ही आगे कर दिया जैसे पुजारी जी मूर्ति के सामने करते थे। अब उन्होंने मुंह ने भगवान ने मुंह भी नहीं खोला। तो गोपी कहने लगी क्या करे कृष्ण करैया तेरे भगवान को, ये तो खाते नहीं है। कहने लगे क्यों नहीं करने से काम चलेगा, सारा थाल इसके मुख में डालो तो अभी खा लो। ए बता कितने वर्षों से भगवान भूखे हैं, एक आध लड्डू से इनका काम चलने वाला नहीं है, वो इंद्र भगवान एक लड्डू से प्रसन्न हो जाता है, देखो सारे की सारा मिष्ठान हाजर हो गई। अब उस गोपी ने जब थाल उठाया, उन्होंने मुख खोला तो थाल की कुल मिठाई उनके अंदर। अब दूसरा गोपी आई, उसने पूजन किया दूसरा थाल की, तीसरा थाल भी, जब 10-15 थाल मिठाई के चले गए और उधर से कतार भी नहीं आ रहा, तो मेरे जैसे भी कई बुद्धि वाले लोग खड़े रहते, उन्होंने सोचा जरूर अंदर कोई ना कोई खंडक खाई खुली है, लगा सारा माल उसी में जा। आप बेचारे कई भागे, इधर देख उधर देख, पहाड़ को देख, खतरा देखिए कुछ नहीं था। कहने का था प्रिय सुंदर साजी 12,000 थाल मिठाई के बन के आए थे और सारे के किसी को प्रसाद भी बाकी नहीं, जरा खाली थाल हो गए, सारे सारे तरफ हो गए। अब देखो लीला कौन पहचाने उनकी लीला को, एक तरफ तो खुद सारे थाल खा रहे और दूसरी तरफ लूट करके खड़े। अनाज चाहिए गोपी कह रही आओ चले दादा भैया, मैंने जैसा नहीं होता सारा उसको मर खिला दिया, मुझे कुछ दिए नहीं, मैंने दो हजार को मैं चलो। अरे महाराज कृष्ण कन्हैया जी आपने कहा भगवान का पूजन करो, तुम तो अपने एक लड्डू को रो रहे हो, हमारी सासू क्या कहेगी, ससुरे को प्रसाद कहाँ से देंगे, हम देखो इंद्र भगवान बच्चे थे थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी घर में प्रसाद लेकर के चली जाती थी, आज सासू कहेगी कि सारे का सारा कहा जो है भोग की सामग्री डाल आए हो तो क्या डाल देंगे। महाराज महाराज मत हो, हम अभी घर जाती है, मैं पकवान बना के तुमको खिलाती। अच्छा देखो फिर अगर नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ बोलूं कभी दिमागा खिला नहीं जाओ। कौन पहचाने कैसे पहचान, तो क्या पहचानो, एक तरफ तो सारे का सारे सदगी रिजकी खा गए और दूसरी तरफ ऊपर से रूठ के खड़े गए कि मुझे खाने को कुछ दिया ही नहीं, तो ये 12,000 साल बोल खा गया। ये है लीला उनकी, ले आओ दुनिया की अकल और नाप करके देखो आप किस हिसाब से नापो इसको। अब क्या हुआ, नारद जी महाराज से नहीं रहा गया और चले गए कहां, स्वर्ग में इंद्र भगवान के पास पहुंचे। नारायण नारायण श्री, इंद्र भगवान ने देखा भाई ऋषि राज नारद जी आज ने खूब आसन वासन दिया बिठाया, पूछने लगे महाराज चुनाव कहां से आप हुआ। तो नारद जी कहने के महाराज आना कहाँ है, चौथे लोक में भ्रमण करते रहते हैं, अमृत लोक से आ रहे हैं और गोकुल मृग की नदी में गए थे उसको देखने की। कह लगे इंद्र भगवान पूछता है कि महाराज अभी आप चौथे लोक से आ रहे हैं, लगे हाँ अमृत लोक से ही भ्रमण करके आ रहा हूँ। अच्छा तो कल हमारा इंद्र पूजन का दिन था, सृष्टि पर सारा पूजन तो ठीक हो गया, क्या लगे महाराज सारी सृष्टि ने कल इंद्र पूजन किया, ओ ब्रिज गांवड़ी है ना, क्यों उन्होंने तो माचस को लिया अग्नि और प्रज्वलन क्यों नहीं है। क्या लगे महाराज और तो सारी सृष्टि में आम का पूजन हुआ है पर वो वृंदावनी है ना जहाँ नंद का छोरा कन्हैया रहता है, वो कृष्ण कन्हैया ने ब्रिज और गोकुल वालों को तुम्हारी पूजन नहीं करने दिया, उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई है तुम्हारी भी। सुंदर साथी जी इन ग्रंथों को जरा पढ़ के देखो, जब यही लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र रुद्र नारायण सृष्टि पर भगवान बन के आते हैं तो ग्रंथों में क्या उपदेश देते हैं, सहनशीलता होनी चाहिए, मानव के अंदर क्रोध नहीं जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ इंद्र भगवान से कोई पूछे भाई सारी सृष्टि में तेरा पूजन हुआ है, अगर दो गांव के अंदर नहीं भी पूजन हुआ तो तेरी तंदुरुस्ती में क्या फर्क पड़ा, भाई सारी सृष्टि ने पूजन कर दिया केवल दो गांव ने अगर कितनी भी पूजन किया तो सहनशीलता को जाने दो, इतना भी सहन ये देवी देवता नहीं कर सकते। भागवत मान लो जैसे ही इंद्र भगवान ने ये सुना कि ब्रिज और गोकुल के अंदर मेरा पूजन नहीं हुआ, उसी समय सुंदर साधवी वामदेव जो जल का वायु का और अग्नि का देवता है तुरंत तो उसको बुला करके आदेश हुक्म दिया कि वामदेव जाओ ब्रिज और गोकुल को चारों ओर से घेर लो और अग्नि बरसाओ, जल बरसाओ, पत्थर बरसाओ और उनका धरती से नामो निशान कर, एक पशु भी और या एक भी मनुष्य प्राणी वहां का चिंता लिखे रहना चाहिए। उनकी शक्तियां उनके अधीन दो तो चारों तरफ से सुंदर साधनी ब्रिज और गोकुल के काली खटाएं और बिजली चमकती है और एकदम दरिया के दरिया नदियों जैसी बारिश ऊपर से पड़ती है। ایسا تو فرش ڈالی آندھی اور پتھر برسنے لگے جس کو ہم لوگ بولے کہتے ہیں, ایسا تمام دھم ہونے لگا. اب جو بوڑھے لوگ تھے جو دیوی دیوتوں کو ہی ماننے والے تھے وہ لگے گوپیوں کو گالیاں نکالی, یا یا تمہارا ستیاناش ہو جائے تو بھی مرو, ہمیں بھی مارو, ہم ناش ہوئے گا ہی ہوئے گا, جاؤ تم نے اندر بھگوان کا پوجن نہیں کیا ہے, نہیں تو اندر بھگوان روٹ گئے اور ہم وہ ستیاناش کر کے رہیں گے, تم نے ہم کو مروا دیا. اور کرشن کریں گے کہ پیچھے لگو اور غصے میں آپ کے لگے شاید ڈر کرتے. وہ اتنی دیر میں تمہارا جل سر پانی پانی کتنا ہی پانی گاؤں میں بہنے لگا. اب گوپیاں بھاگی بھاگی کہاں گئی؟ کنہیا کے پاس گئی. دیکھا کرشن کہہ رہی دیکھو مہاراج آپ کے کہنے پر ہم نے بھگوان کا پوجن اندر کا نہیں کیا اور گوتھن کا پوجن کیا تھا, اب کرپا کرو کسی طرح سے ہمیں بچاؤ. دیکھو دیکھو ہمارے بچے بہنے لگے, دیکھو ہمارے گھروں میں پانی تو تھا, بھگوان جلدی اس کو روکو. روٹ کر کے کھڑے پڑھ لو کرشن کہہ کو پڑھ لو. تمہارا کوئی پرچیا نہیں جس کا پوجن کیا تھا اس کے پاس جاؤ, مجھے ایک لڈو بھی کھلایا تھا.
پروت کا اوپر کا بھار اتنا اگنی سے
दबा दिया कि जैसा जल गिरता है सन्न 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 वो करोटी पीता जाता है। एक बूंद ना हुआ, एक बूंद भी वृद्ध और गोकुल के अंदर नीचे नहीं गिरी, बल्कि और जो पानी इतना बरसा था वो सारा जब बहा तो जिनों जिनों ने इंद्र की पूजन की थी वो सारे गांव वाले नदियों में बह गए, सर्वनाश हो गया। इसको कुरान में हूद नबी के घर तूफान आना कहते थे। हूद नबी जो ब्रिज के अंदर ज्ञान के साथ साफेद होकर के हूद नबी के घर को दूर का तूफान आया। गौतम पहाड़ को क्या लिखा है, वो ये दूर को कहते हैं, पहाड़ को दूर कहते हैं गौतम। एक तूफान जो है कुरान के अंदर नू हूद नबी के घर तूफान कहते हैं, प्राकृत फल जिसको कहते हैं, ये सृष्टि के अंदर प्रलय का रूप बन गया। अब 8 दिन के बाद जब वर्षा बंद होगी बाहर जो का त्यों रख दिया, अब नारद जी फिर भगे स्वर्ग में नारद। इंद्र जी पूछने लगे, सुनाओ महाराज क्या हाल है त्रिजल गोकुल का, अब तो नामो निशान नहीं होगा। कह लगे, हाँ महाराज जिन्होंने तुम्हारी पूजा की थी ना उन गांव का निशान तो मिट गया है, त्रिजल गोकुल वाले तो आनंद मंदों से रह रहे हैं। देखो कह लगे, ये कैसे हो गया। कह लगे, महाराज कृष्ण कन्हैया ने गौतम पहाड़ को आंगुली पर उठा लिया और सबकी रक्षा कर ली, उनके हाथ तो एक भी बूंद ने दखल किया ही नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। कह लगे, अच्छा और गुस्सा चल गया, अभिमान अहंकार इन देवी देवतों के अंदर इतना बड़ा खड़ा होता, इतना अभिमान आ गया, पाताल के अंदर शेष को हुक्म दिया कि नीचे से जैसे अपन लोग खेतों में बोरिंग करते नहीं, बोरिंग तो नीचे से पानी अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है, इसको बुम फाड़ना कहते हैं शास्त्र में लिखा। हुक्म दिया नीचे से कि जैसे नीचे बोरिंग कर देते ऐसे ब्रिज और गोकुल जितने भाग में है इतने में से नीचे पाताल छोड़ दो ताकि ये नीचे का नीचे ही गर्क हो जाए और इनका नाश हो जाए। अब इंद्र हो इंद्र के कहते ही नीचे से तो क्या फटेगा, तुरंत अपनी आंख को ऐसे घुमा दिया तो जितनी धरती पर ब्रिज और गोकुल बसा हुआ था जैसे अपने धरती में से किसी वृक्ष को निकालना हो छोटे पेड़ को तो काट करके धरती निकाल रहे थे, इसी तरह से नीचे से जो पानी आया तो ब्रिज और गोकुल तो जमीन से कट चुका था, वो ऐसे का ऐसे ही जैसे मानो सागर में कोई टापू होता है इस भांति ऊपर 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 जा रहा है, नीचे से पानी 10 फुट 20 फुट 50 फुट 100 फुट जब आ गया तो धरती में कुछ भी बाकी रहा नहीं। अब जब 100-200 फुट तक पानी गया और ब्रिज और गोकुल इतना ऊंचा उठ गया तो नारद जी महाराज भगे स्वर्ग में, कहने लगे इंद्र जी महाराज जब इसे तैयार हो जाओ कृष्ण कन्हैया सारे ब्रिज गोकुल को लेके तुम्हारे स्वर्ग पर हमला करने के लिए आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और जब तैयार हो जाओ छोड़ दो स्वर्ग भागो यहां से। अब इंद्र भगवान ने जब नीचे सृष्टि पर निगाह डाली तो प्रकृति में जल ही पता का सारा जल ऊपर बुला लिया और ब्रिज और गोकुल ऊपर ऊपर आ रही है तो तुरंत इंद्र भगवान की गले में कपड़ा डाला, मुख में आकर के तुरंत कृष्ण कन्हैया के चरणों में दंडवत। सुंदर साजी कौन करेगा इसे, कृष्ण कौन बातेगा इसकी लीलाओं को, आकर के इंद्र चरणों में गिर गिरा करके रोता है, मेरे प्रभु दीनानाथ मुझको किसी ने सूचना भी नहीं दी थी इसलिए मुझे क्षमा कर, और हकीकत है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सूचना किसको दी, मृत लोक में ग्रंथों को दी, स्वर्ग में तो कोई सूचना गई नहीं, इसलिए वो क्षमा का पात्र बन गए। तब कहने लगे, अच्छा इंद्र उठ के खड़ा हो जाए, पहले ये बता, ठीक तो है सूचना तेरे पास नहीं आई होगी, तुझे स्वर्ग का भगवान इसलिए बनाया था कि तेरे अंदर ना सहनशीलता ना नम्रता और इतना अभिमान ही अभिमान भरा है, सारी सृष्टि ने तेरा पूजन कर दिया था। अगर ब्रज गोकुल ने ये भी पूजन किया था तो क्या फर्क पड़ गया, वहां हम ही थे, हम ही लीला कर रहे थे। इसलिए निकट भविष्य में ध्यान रखना, जहां पार ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला होती होगी वहां किसी प्रकार के भी विघ्न नंबर प्रणाम करके क्षमा चाहते कहते हो मेरे प्रभु बिल्कुल होगा, जहां तुम्हारी लीलाएं होती होंगी वहां कभी भी विघ्न नहीं होगा। आगे बढ़े, जब 8 वर्ष की आयु 8 वर्ष का समय ब्रिज में आए हुए हो गया तो अब 58 जो बातें श्री राजीव राय ने हमें बार बार कही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ माया में रहूंगा पर तुम मेरी और खान पर नहीं सकोगे। सुंदर साथी जी माया को इतना और थोड़ा कर दिया कि वह सास वह ससुर वह जेठ वह ननंद जो कभी भी पहले तंग नहीं करती थी गोपियों को, अब क्या हो गया कि अड़ोस में पड़ोस में गली में मोहल्ले में रहने वाली औरतों पर और भाइयों की बुद्धि पर राज्य मराज की तरफ से माया का ऐसा पर्दा डल गया कि वो जो जो गोपी थी उनके घर वालों को हैरान करने लगे, सास को ससुर को जेठ को देवरा को और ननद को उनके सगे सहोदरे में दोस्त मित्र सखी सहेलियां उनको ताना कसने लगी कि देखो तुमको शुद्ध नहीं आती है। ससुर को लोग बड़े बड़े कहने लगे मोटे लोग कि तेरे लड़के की बहुत सारा दिन जमुना तट पे रहती है, क्या तुम्हारी कुल की शर्म नहीं आती है। सास को लोग ताना मारते हैं, ननद को वो होता है, देवर के जो यंग ब्लड फ्रेंड होते वो तो कहते हैं तू क्या है, मेरी भाभी तो सारा दिन नंद के छोकरे के साथ खेलती है, क्या तुम्हारा खानदान है, इस खानदान के तुम लोग हो। अब वो भी तो बिचारी एक, और जब वो जा रहे घर तो देवर खड़ा हुए लेके लखा वो लक्ष लेके खड़ा पहले जिम्मेदार भाभी की बच्ची को कहां गई थी, आने दो रात को भैया को जो सारा दिन खान उड़ा के साथ करती रहती है, दुनिया हमारे ऊपर छुपती है बिल्कुल तुमको नहीं जाता, तुमको शर्म नहीं आती है, तू ऐसा कर उदाहरण करती रहती है। पहले तो देवर ही ऐसे गंदे गंदे शब्द से कहने लगा, सहन नहीं हो सकते कैसे। फिर घर में ननद बैठी है वो खाने को आती है, बता खुदा कोई सांस है तो साधु गिर की तरह से पीछे पड़ती है। फिर अंदर जाती है तो सफरा तो और भी तुम जानते हो मगर कैसा गर्व चलता है, तू तू ऐसी चटा नहीं, हमारे घर छोकरी आ गई है हमारे खानदान का खर्च कर दिया, हमारी नाक काफी नाती कर रहे तो भाई आपको काम करो सब सारा दिन जो है कृष्ण करैया के साथ जमना कर सारे मत तो मैं वहां ले कर रहा हूँ देख वो। फिर भी बेचारी गोपियां सुनती है रोती है पर कृष्ण कन्हैया का प्रेम उनके हृदय में से सहन करते। अब रो रो के कुछ सहारा रहता है कि चलो पति देव तो रात को प्यार से ही बात करते हैं, अब वो पतियों का भी जो बुद्धि होती है वो लगती है घूमने और वो भी गोपियों को इस तरह के जो है शब्द जो है टीके कहते हैं। 3 वर्ष तक सुंदर सास जी उन गोपियों का जीना इतना भारी कर दिया कि वो अब इस निर्णय पर आ गई कि किसी तरह से कृष्ण कन्हैया बांसुरी न बजावे तो हमारी जान छूट जाए और हम जमुना तट पे न जाए। बांसुरी जो है कृष्ण कन्हैया की बांसुरी इसने हमारे प्राण खेल सकते, एक बांसुरी के पीछे एक देवर की बातें एक ननद की बातें एक देश की बातें एक ससुराल की बातें अब हमारे से सहन नहीं होती, इससे तो कृष्ण कन्हैया के पास ही ना जाने तो अच्छा, अब मरे तो क्या करें। जिनमें सबके बात आ गई कि अब कृष्ण कन्हैया के पास ना जावे तो ठीक रहेगा। आ जाओ, ये तो प्रबल था और करना ही क्या था, इसलिए तो माया पंद्रह और कस लगाया था। अब जब 11 वर्ष आ गए, आयु पूर्ण होगी 11 वर्ष, तो भादो अष्टमी के बाद पूर्णिमा आती है, उस पर कृष्ण कन्हैया गोपियों को पूछते हैं कि गोपियों देखो आज शरदपुर की कैसी सुंदर सौभाग्यता है, आज तुम ऐसे करो, जानते ना अब सुनने का प्रसंग है जो बाद में पूछते हो, ये 11 साल वर्ष से 12 दिन के पीछे क्या हुआ, अब ध्यान दो क्या हुआ। कृष्ण कन्हैया गोपियों को कहने लगे, श्री गोपियों दिन में तो तुम हमारे सब जमना सकते रहती हो, आज शरद पूनम की सुहानी रात कितनी, जन्माष्टमी के बाद पूर्णमासी उस पर अभी शरद पूनम वाली रात नहीं, आदो की रात होना, क्योंकि 52 दिन का रोष होना है बीच में, तब शरद पूनम की रात आती है। तो कहते आज रात्रि तुम यदि मेरे साथ वृंदावन में चलो मधुबन में, तो वहां चल के रास की लीला करेंगे। बस सुंदर साधनी, इतनी बात कृष्ण कन्हैया के कहने की देरी हटी, जो गोपियों के दिल में वो सासु के शब्द, ससुरा के शब्द, देवर के शब्द, ननद के शब्द जो इतने दुखी कर रहे थे, वो गुस्से में आकर के ना अब ये भी सुख नहीं रही कि अपने से उस प्यार के मोहन स्वरूप जो हमारे धनी है आत्म के, उसके साथ बात क्या कहती, उससे मैं आके कह दिया हो कृष्ण कह दिया तूने ये क्या कह दिया है, बड़ी जल्दी से कह दिया है रात्रि को मेरे साथ बड़ी, तू तो दुर्लभ है दुर्लभ, तू तो विषर्म है विषर्म, तू तो कमी है कमी, तू तो नंद का है भोटा, ना तेरा कोई ससुरा, ना तेरी कोई सास, ना तेरे कोई देवर, ना तेरे से पूछने वाला, तुझे क्या खबर है, तू तो निर्लज है निर्लज, ना बाबा ना हम पर पुरुष के साथ रात्रि को अकेले नहीं जा सकते, हम तो है कुलवंती नारी और तुम हो निर्लज बेशर्म और कामी पुरुष हो, हम ऐसे पुरुष के साथ रात्रि को क्या भाई क्या हो गया, 11 साल में अपने धनी को क्या कहने लग गए कि तुम निर्लज हो और हम कुलवंती नारी, तुम बेशर्म, तुम नंद के छोटा हो, हम तुम्हारे साथ रात्रि को अकेले नहीं जाएंगे और पर पुरुष के साथ नहीं। रात्रि महाराज और कृष्ण कन्हैया कौन हो गए, पर पुरुष, और माया के पुतले क्या बन गए, हम हमारे पति और हम है कुलवंती नार, और कृष्ण कन्हैया तेरी इस वासनी ने हमारे प्राण खींच रखे, अगर तू वासनी ना बजावे तो हम तो सुख शांति से चैन से अपना जीवन व्यतीत करें। कृष्ण कन्हैया यही चाहते ही थे, इसीलिए माया को ऑफसाइड किया ही था, कहने लगे गोपियों अगर ये मेरी बांसुरी तुमको इतनी सताती है, ये मेरी बांसुरी तुमको इतनी दुखी करती है, तो आज के बाद बांसुरी नहीं बजेगी। बांसुरी को उठाया और जो पटका कमर में था उसमें लगा दिया कि लोग अपनी बांसुरी जाओ, जाओ कल से तुम जमना तक नहीं और मैं कभी भी तुम्हें अब बुलाऊंगा नहीं, अगर मेरे बुलाने से तुम्हें कष्ट होता है, तुमको दुनिया की बातें सहन करनी पड़ती है, हम बांसुरी नहीं बजाएंगे और तुम जमना तक के नहीं आना, वो क्या कहते शुक्र है थैंक यू कन्हैया, जान छूटी, घर वालों ने हमें खा रखा था, हम बहुत गले रहे, कल से तुम बस मिले। सुंदर साधवी जोश ने आके गोपियों ने कह तुझे अब रात कैसे बीते, रात कैसे बीतेगी उसके बिना, आगे तो सहारा रहता था कि अब सुबह जाना है, अब रात बितानी गोपियों के लिए भारी है और रात बितानी कृष्ण कन्हैया के लिए भारी है कि सुबह कर खेलेंगे कृष्ण के साथ। दिन हुआ, गौओं को लेकर के कृष्ण कन्हैया गए और क्या किया कि जो चरण कमलों में झांझरी खुंदरी कांबी और करला था ना पायल, वो भी उतार करके यशोदा मैया को दे दी कि माता जी आप हम बड़े हो गए, हम झांझरी खुंदरी अच्छे नहीं लगती, और उतारी किस लिए थी कि ना कोई गोपी इसकी आवाज सुनेगी और ना ही कोई घर से निकल के बाहर हमें देखने के लिए आएगी। वो भूषण भी उठा जैसे जैसे कभी उस पत्थर में बैठ कभी उस पत्थर में बैठ, सिर कैसे पीछे, कृष्ण कन्हैया भी दुखी और गोपियां भी सारी सोचने लगी थी अच्छा ठीक है कृष्ण कन्हैया से रूठ कर, अच्छा आज का दिन बीत जाने दो कल देखी जाएगी। अब जब कल का दिन आया, हाँ अब क्या करेंगे ना बाबा, हम तो नहीं जाते, कृष्ण कन्हैया जाते ही पूछेगा कल क्या क्यों नहीं आए, तो हम तो नहीं जाते, हमको शर्म लगती है। दो दिन बीत गए, जैसे एक आदमी एक दिन मंदिर ना ना आवे तो दूसरे दिन फिर आने को दिल करता ही नहीं, अरे कल नहीं गए थे लोग क्या कहेंगे, चलो आज भी नहीं जाते, दो दिन नहीं गए तो फिर मतलब से तो कोई इच्छा होता ही नहीं है। सुंदर साधवी करते करते एक दिन बीता, दो दिन बीते, चार दिन बीते, चालीस दिन बीते, पचास दिन बीते और 52 दिन ना गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। एक ही नगर में एक ही गोकुल ब्रिज में रहती है, रोज प्रातः कृष्ण कन्हैया को गोपियां देखती है जा रही है, साय समय भी देखती है कि कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, ना कृष्ण कन्हैया ने प्रणाम किया और ना ही क्यों मैं साथ रहते हुए केवल 11 साल के अंदर अपने धनी को अपने से जुदा कर दिया। अब क्या हुआ, अब सावधान जो समझ में नहीं आता ना कि हमको तो नहीं, फिर समझ आती क्या हुआ, अब साफे को जो क्या हुआ, किसको समझ नहीं लग रही, क्योंकि इसके बाद ही क्या हुआ बस यही हमको समझ नहीं आती और भूल जाते। अब अक्षरातीत पारब्रह्म श्री राजी महाराज अपनी आत्माओं के लिए इस दुनिया में आए थे या और किसी के लिए, बोलो भाई, तो जिनकी खातिर वो आए वो उनको प्रणाम करके राजी नहीं है तो वो लोग क्या करें इस दुनिया में रहे, बोलो। अब वो श्री कृष्ण रक्षाती तो श्री राजीव राय की शक्ति ने सोचा कि आत्माओं ने जो कहा था कि हम माया में जाकर के भूलेगी और ये तो प्रणाम करके भी अब राजी नहीं है तो फिर इस दुनिया में रह के करना ही क्या है, और दूसरा अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी पूरी, बोलो कर दिए। अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगनी कर रखी है कि मुझे परम धाम की आनंद अखंड लीला दिखाइए, तो अखंड की लीला कहाँ हो सकती है, योग माया के विमान में, क्योंकि दुख की लीला देखनी है तो कहाँ आना पड़ेगा, काल माया के विमान में, अखंड लीला